नमस्कार, जनसत्ता में सुनिए सुर्खियां, देश दुनिया की बड़ी खबरें। कनाडा में अपनी कमजोर स्थिति को खालिस्तानी समर्थकों के जरिए मजबूत करने की कोशिश में जुटी जस्टिन ट्रूडो सरकार ने एक और गंदी हरकत की है। जस्टिन ट्रूडो सरकार ने अपने नागरिकों को एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर भारत के जम्मू कश्मीर राज्य की यात्रा से परहेज करने के लिए कहा है। कनाडा सरकार ने इसकी वजह राज्य की अप्रत्याशित सुरक्षा स्थिति बताई है। कनाडा सरकार ने भारत के लिए अपनी ट्रैवल एडवाइजरी में कहा है कि अनप्रेडिक्टेबल सुरक्षा स्थिति के कारण केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की यात्रा से बचें। वहां आतंकवाद, उग्रवाद, सिविल अनरेस्ट और किडनैपिंग का खतरा है। एडवाइजरी में आगे कहा गया है कि इन जगहों में लद्दाख शामिल नहीं है। इसके अलावा कनाडा ने ट्रैवल एडवाइजरी में अपने नागरिकों से कहा है कि वो अप्रत्याशित सुरक्षा कारणों की वजह से गुजरात, पंजाब और राजस्थान में पाकिस्तान सीमा से लगते 10 किलोमीटर के इलाके में यात्रा करने से बचें। सीमा के इलाकों को लेकर जारी एक एडवाइजरी में अटारी वाघा बॉर्डर का नाम नहीं है। अमेरिका में लोगों को टेलीकॉल करके उनसे अवैध रूप से 12 लाख डॉलर की उगाही करने की साजिश में संलिप्तता को लेकर दो भारतीय नागरिकों को 41 महीने की जेल की सज़ा सुनाई गई है। अमेरिका के एक वकील ने यह जानकारी दी। वकील फिलिप आर सेलिंगर ने मंगलवार को बताया कि आरू शोबिक मित्रा और गर्विता मित्रा ने टेलीकॉल के जरिए धोखाधड़ी के मामले में यूएस डिस्ट्रिक्ट जज इस्थर सालास के समक्ष अपना गुनाह कबूल कर लिया था। सेलिंगर ने कहा, प्रतिवादियों और साजिशकर्ताओं ने धोखाधड़ी और धमकियों के जरिए ऐसे नागरिकों को पैसे भेजने के लिए मजबूर किया जो आसानी से उनके झांसे में आ सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय धोखाधड़ी के इस मामले में दायर दस्तावेजों और अदालत में दिए गए बयानों के अनुसार भारत स्थिति ये आपराधिक कॉल सेंटर स्वचालित टेलीकॉल के जरिए अमेरिकी नागरिकों, खासकर बुजुर्गों से धन उगाही की मंशा से देश भर में पीड़ितों से संपर्क करते हैं। सुरक्षा वार्ता के लिए मॉस्को पहुंचे चीन के एक वरिष्ठ राजनयिक की मेजबानी कर रहे रूस ने दोनों देशों को नियंत्रित करने के पश्चिमी देशों के कथित प्रयासों का मुकाबला करने के वास्ते नीतिगत मामलों में रूस और चीन के बीच घनिष्ठ समन्वय का आह्वान किया है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अध्यक्षता वाले रूस के सुरक्षा परिषद के सचिव निकोलाई पेत्रुशेव ने चीन के विदेश मंत्री वांग ये से मंगलवार को कहा कि मॉस्को रूस और चीन के बीच मौजूद व्यापक साझेदारी एवं रणनीतिक सहयोग में और प्रगति एवं मजबूती चाहता है। पेत्रुशेव ने कहा कि पश्चिमी देशों द्वारा रूस और चीन को नियंत्रित करने के उद्देश्य से सामूहिक रूप से चलाए जा रहे अभियान के बीच अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में रूस चीन समन्वय एवं संवाद को और मजबूत करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ अक्टूबर महीने में पाकिस्तान लौटेंगे। नवाज शरीफ ने पार्टी नेताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 4 साल बाद आगामी आम चुनाव में अपनी पार्टी की अगुवाई करने के लिए 21 अक्टूबर को स्वदेश वापसी को लेकर वो रोमांचित हैं। डॉन न्यूज़ के अनुसार नवाज शरीफ ने यह भी कहा कि यदि PMLN की अगुवाई वाली गठबंधन सरकार ने देश को डिफ़ॉल्ट होने से नहीं बचाया होता तो फिलहाल पेट्रोल की जो कीमत 330 रुपये प्रति लीटर है वो 1000 रुपये प्रति लीटर होती। बता दें कि दहाई अंक में इन्फ्लेशन के पहुंच जाने के बीच पाकिस्तान की कार्यवाहक सरकार ने पिछले सप्ताह पेट्रोल और डीजल के दाम में फिर वृद्धि की थी और उसे 330 रुपये लीटर कर दिया। इसके बाद लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और इसे कानूनी चुनौती भी दी गई। नवाज शरीफ ने मरियम नवाज, हमजा शहबाज, एहसान इकबाल, परवेज राशिद, खुर्रम दस्तगीर, मरियम औरंगजेब, आजमा बुखारी और राणा सनाउल्ला समेत वरिष्ठ PMLN नेताओं से कहा कि वो देश वापसी को लेकर रोमांचित एवं खुश हैं। सिंगापुर के सांसदों ने भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के दायरे में आए परिवहन मंत्री एस ईश्वरन को संसद से निलंबित करने के विपक्षी दल के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। सांसदों ने ईश्वरन के खिलाफ जाँच सम्पन्न होने के बाद इस मामले पर विचार करने के पक्ष में वोट किया। सदन की नेता इंद्राणी राजा ने मंगलवार को 2 घंटे चली बहस के दौरान कहा कि अगर ईश्वरन पर आपराधिक आरोप लगाए जाते हैं तो सत्तारूढ़ पीपुल्स एक्शन पार्टी उनके सांसद भत्ते को वापस लेने पर विचार करेगी। प्रोग्रेस सिंगापुर पार्टी के प्रस्ताव में ईश्वरन को संसद के मौजूदा सत्र के शेष भाग के लिए एक सांसद के तौर पर निलंबित करने का आह्वान किया गया था। ईश्वरन को जुलाई में गिरफ्तार किया गया था और भ्रष्ट आचरण जाँच ब्यूरो उनसे जुड़े मामले की जाँच कर रहा है। ये जांच सिंगापुर में आयोजित F1 दौड़ से संबंधित है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने मंगलवार को कहा कि यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस भोजन और ऊर्जा से लेकर अपहृत बच्चों तक हर चीज को हथियार बना रहा है। उन्होंने विश्व नेताओं को चेतावनी दी कि उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की वार्षिक शीर्ष स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि जब नफरत को किसी राष्ट्र के खिलाफ हथियार बनाया जाता है तो वो वहीं नहीं रुकता है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन के खिलाफ वर्तमान युद्ध का लक्ष्य हमारी ज़मीन, हमारे लोगों, हमारे जीवन, हमारे संसाधनों को आपके खिलाफ हथियारों में बदलना है, अंतर्राष्ट्रीय नियम आधारित व्यवस्था के खिलाफ। उन्होंने ईंधन और खाद्य आपूर्ति पर युद्ध के प्रभाव की ओर इशारा किया। उन्होंने रूसी आक्रमण के बाद देश से हजारों बच्चों के अपहरण के मुद्दे को भी उठाया। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।